Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसलिए नारायण मृग सोने का होता नहीं है, लेकिन दिख तो सकता है। सोने का मृग दिखने में कोई आपत्ति नहीं, होने में आपत्ति है। जैसे वो मृग आया और सीता जी को वो मृग किसका क्या मालूम पड़ा? स्वर्ण मृग, सोने का मृग। आहा हा, क्या चमकता, इतना आकर्षण। जिसके प्रति लोभ निर्मित होना तो वो चीज सोने की हो जाती है। वो विषय विषय नहीं रहते, वो फिर स्वर्ण विषय बन जाते हैं। जिसके प्रति भी लोभ हो वो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है, और जिसके प्रति लोभ ना हो तो, अरे वो सोने का भी मृग आए ना तो आपको सोने का नहीं लगता है, क्योंकि लोभ नहीं है वहां। वहां पर प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं है, इसलिए आसक्ति वस्तु को सत्य बना के दिखाती है। यहां मां सीता जी के मन में उसके प्रति इतना आकर्षण बढ़ा कि वो मृग भी सीता जी को सोने की तरह लगने लगा, सोने की तरह। और सीता जी ने प्रार्थना की, प्रभु इस सोने के मृग को आप पकड़ करके ले आओ। और राम जी ने भी फिर तीर और कमान उठाकर उनको पाने के लिए उनके पीछे दौड़ लगा दी, और भगवान श्री राम उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जा रहे, और वो स्वर्ण मृग आगे आ गया। ये प्रतीकात्मक आप उसको अपने जीवन में इस घटना को जोड़ करके देख सकते हैं। आज वो मृग आगे आ गए और भगवान श्री राम तीर कमान लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और अंत में स्वर्ण मृग मिला, तीर लगा, मिला। भगवान जब उनके सामने गए तो वो क्या था? जब तीर लगा और जब मिला वो स्वर्ण मृग, जब छुआ, हाथ लगाया प्रभु ने, तो क्या मिला उनको? मारीच था वो सामान्य मृग भी नहीं था। सोने के मृग की तो बात ही छोड़ो, अरे कम से कम सोने का न हो तो मृग तो मिल जाता, तब तो खुशी थी। लेकिन वो सोने की बात छोड़ो, वो मृग भी नहीं था, वो तो मिला राक्षस, मिला विनाश। चाहती सोने की, मिला दुख। अब वहीं से तो सीता जी का हरण, कितना बड़ा विनाश, कितना बड़ा दुख, पूरे रामायण को ही बदल दिया उस घटना ने। यदि वो सोने का मृग सीता जी के सामने नहीं आता तो शायद सीता जी का हरण नहीं होता। कितने बड़े अनर्थ की शुरुआत, और उस शुरुआत का प्रारंभ जो है ना, वो बिल्कुल छोटी सी घटना से, बहुत छोटी सी घटना। हिरण आया और सीता जी ने देखा, आपको बात की घटना मालूम पड़ती है, लेकिन उस अनर्थ का प्रारंभ कितनी छोटी सी घटना से हुआ, कितनी छोटी सी। सीता जी ने हिरण देखा और वो हिरण सोने का मालूम पड़ा। वह हिरण दिखना भी बुरा नहीं था, हिरण दिखना भी बुरा नहीं था, लेकिन सीता जी ने हिरण को किस रूप में देखा? सोने के रूप में देखा, है ना? और वहीं से अनर्थ का प्रारंभ हो गया। और इस संसार के प्रति भी नारायण, हमारे जीवन में भी इस दुनिया दिखे तो कोई बात नहीं है, दुनिया के बहुत सारे पदार्थ भी दिखे तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, अनर्थकारी नहीं, लेकिन वो सोने की दिखाई दे तो ना? दुनिया दिखती है तब हम भागते कि सोने की दिखती है तब भागते? ग्रीषानंद जी दो चार दिन छुट्टी मारे आप। अब कर्तव्य है ना, कर्तव्य तो निभाना है, कर्तव्य धर्म है। आप किसी भी वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं ना, तो वस्तु के दर्शन से नहीं, अपितु वस्तु आपको सोने की मालूम पड़े, बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़े, आप पगला जाते हैं। कब? जब उसके प्रति भाव बनता है, ये बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। अब दुनिया फीकी हो जाती है उसके सामने, दुनिया फीकी, अब पागलपन शुरू, और फिर उसके प्रति क्रिया, उसके प्रति सारी शक्ति हमारी लग जाती है उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए दुनिया के पदार्थों का दर्शन अनर्थकारी नहीं है। उस दर्शन में जो आकर्षण है वो हमारे जीवन में अनर्थकारी है। दिखाई दी वस्तु कोई बात नहीं है, लेकिन वो सोने की नहीं दिखाई दे बस। और सीता जी के जीवन में कितना बड़ा ये वासना है, ये जो है ना वासना है, वो दुनिया को बहुत सत्य बहुत सुंदर बना के दिखाती है। भूख लगी हो तो आप भोजन देखना, और पेट भरने के बाद भी भोजन देखना, भोजन वही होता है लेकिन देखने में अंतर हो जाता है। भोजन आपके सामने पेट भरा हुआ है, आपको उस समय भोजन कैसे दिखाई देता है? और बहुत भूखे हैं, तीन दिन के भूखे, और उस समय भी आप भोजन को देखो कैसे दिखाई देता है? भोजन तो वही है। इसलिए वस्तु हमको प्रभावित नहीं करती है, हमें ये दुनिया आकर्षित नहीं करती है। इसलिए यहां शब्द का प्रयोग किया, विचार पूर्वक तौ संपरित्य विविनक्ति दी रहा, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य मेतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। मनुष्यम एतत्, ये बाहर के पदार्थ हमें अपने तरफ आकर्षित करते हैं। आपके सामने भोजन आता है, ये दुनिया के पदार्थ भी आते हैं, लेकिन उसमें जो आकर्षण पैदा करती है हमारी आसक्ति, हमारी आसक्ति ही आकर्षण पैदा कर देती है। और आकर्षण ऐसा पैदा हो जाता है उस समय अपने को लगता है कि कितना, लेकिन उस समय अपने को ऐसा लगता है क्या कि ये जो स्वाद है ये भोजन में नहीं है, ये स्वाद भूख में है। आपको उस समय ऐसा लगता है क्या, विवेक जागता है क्या कि भाई ये भोजन इतना अच्छा लग रहा है, इसका जो अच्छापन है, इसका जो स्वादु है, स्वाद है, ये भोजन का स्वाद नहीं है, ये किसका स्वाद है? भूख का स्वाद। लेकिन ये विवेक जगता नहीं है। यदि आपको मालूम पड़े कि स्वाद भूख का है तो आप भोजन के भोजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि भूख को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? आदमी क्या बनाना चाहता है? आदमी भूख बढ़ाना चाहता है कि बढ़िया बढ़िया भोजन बनाना चाहता है? आदमी बड़ा विचित्र है, भोजन पच नहीं रहा है, तो आदमी को चाहिए कि भैया पच इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप बिना भूख खाए हैं, ज्यादा खाए हैं, खाने में संयम नहीं था, खाने में नियमन नहीं था, तो आदमी सोचता है कि वो खाएंगे तो पचेगा, वो बदल देता है, वो खाएंगे पचेगा, ऐसा खाएंगे। आदमी का ध्यान खाने पर होता है कि भूख पर होता है? आदमी का ध्यान भूख पर नहीं होता, आदमी का ध्यान खाने पर होता है। इसलिए विवेकी पुरुष का ध्यान भोजन पर नहीं होता है, उसका ध्यान भूख पर होता है। उसको मालूम है ये चीज हमें इसलिए अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि भूख नहीं है, लेकिन अविवेकी आदमी भूख पर ध्यान नहीं देता है, वो कहता है कि भोजन अच्छा नहीं बना, वो सोचता है कि अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाने वाला ढूंढो, वो अच्छा नहीं लगा तो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ। इसलिए नारायण, आपका कितना भी अच्छा भोजन हो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है, आपके अंदर भूख है तो भोजन स्वादिष्ट होता है ना? आदमी तो बिना भूख ही खा लेता है, आदमी बिना भूख खा लेता है। इसलिए यहां शब्द का प्रयोग किया, विविनक्ति धीरा संपरित्य, एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण दिए। सांपरित्य अच्छी प्रकार से, यहां क्या है ना, जैसे गीता में शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में, भगवान ने कर्म का भी प्रतिपादन किया, ज्ञान का भी प्रतिपादन किया। भगवान ने कहा ज्ञान योग श्रेष्ठ हैं, और फिर भगवान ने यह भी बोला कि तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अर्जुन का मन व्यामिश्रेव हो गया, मिला मिला जुला हो गया, एक कर्म और उसमें ज्ञान मिला, ज्ञान में कर्म मिला। अब अर्जुन सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं कर्म करूं कि ज्ञान करूं। व्यामिश्रेण वाक्येन, मिले हुए वचनों से बुद्धि मेरी मोहग्रस्त हो गई है। और यहां भी शब्द का प्रयोग किया ना, संपरित्य, माने मिली हुई चीज। यहां भगवान शंकराचार्य जी कहते व्यामिश्री भूते इवा मनुष्यम एतम पुरुषमा इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रियश्च। इसलिए विवेक नहीं होता है, विवेक नहीं प्राप्त कर पाते हम। क्यों? क्योंकि ये चीजें मिली जुली है ना, मिली जुली। अपने को यही नहीं मालूम पड़ता है कि भोजन स्वादिष्ट था इसलिए हमें अच्छा लगा, कि भूख थी इसलिए अच्छा लगा, है ना? हम विवेक नहीं कर पाते हैं। भूख थी इसलिए भोजन अच्छा लगा, कि भोजन अच्छा था इसलिए अच्छा लगा, इसका विवेक नहीं कर पाते। ये दुनिया के पदार्थ हमें अच्छे क्यों लग रहे हैं? ये हमारे अंदर उसके प्रति आसक्ति है, इसलिए वस्तु अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि सामने वाली वस्तु बहुत सुंदर इसलिए अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है। अक्सर आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें ना विचार की चीजें हैं, केवल श्रवण करने की चीजें नहीं है। स्वयं देखे ये मनन होता है। जब आप इसको स्वयं जब प्रश्न उत्तर करके आप सोचने लगते हैं तो ये केवल श्रवण नहीं रहता है, वो फिर श्रवण भी मननात्मक हो जाता है। आप सोचते हुए जब श्रवण करते हैं तो वो श्रवण केवल श्रवण नहीं रहता, वो मननात्मक श्रवण बन जाता है। आप किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि भैया मेरे अंदर उसके प्रति आसक्ति है, मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम है, इसलिए वो वस्तु हमको अच्छी लग रही है। कोई अच्छी वस्तु नहीं लग रही है तो आपको ऐसा लगता है क्या कि भैया मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, इसीलिए ये वस्तु मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप इस प्रकार जब अन्वेषण करेंगे ना तो ये सत्य परक होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, वहां का इलाज यहां नहीं करते, वहां करते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति आपको बुरा लगा, तो बुरा लगा ये यहां है कि वहां है? लेकिन आप इलाज कहां करते हैं? वहां करते हैं। रोग यहां है और उपाय उसके प्रति द्वेष रखते हैं, सामने वाले के प्रति द्वेष रखते हैं, भैया उसको तोड़ो फोड़ो। नहीं नहीं नहीं, उसका उपाय वहां नहीं, उपाय कहां है? राग यहां हो तो वो वस्तु अच्छी लगेगी, और द्वेष यहां हो तो कितनी भी सुंदर वस्तु क्यों ना हो, यदि आपके मन में द्वेष है वस्तु सुंदर नहीं लगेगी, वो व्यक्ति सुंदर नहीं लगेगा। और कितना भी बुरा व्यक्ति हो लेकिन आपके मन में उसके प्रति राग है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमारे अंदर हमारे हृदय में यदि द्वेष है, हमारे हृदय में यदि राग है, तो राग और द्वेष बाहर की वस्तुओं को बदल के दिखा देता है, वो बिल्कुल ही बदल के दिखा देता है। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य आपके जीवन का अनुभव। शास्त्र जो है ना ये कहता है, इसलिए आप मत मानिए। आपका अनुभव है इसलिए आप मानिए। आपको आपका कठोपनिषद, आपके उपनिषद, आपके वेद वेदांत ग्रंथ आपको अंधविश्वास में नहीं ले जाते हैं, आपको अपनी अनुभूति में ले जाते हैं। शास्त्र आपको केवल स्मरण दिलाते हैं, आप जो अनुभव करते हैं उसका स्मरण दिलाते हैं। इसलिए आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्याशितव्य द्रष्टव्याश्च। आप आत्मा के बारे में सुनो और सुनने के बाद मानो, नहीं, ये अंधविश्वास की बात होगी। आपने सुना और माना, आपने सुना, सुनने के लिए श्रवण श्रद्धा की जरूरत थी, आप सुनो श्रद्धा से, सुनो भैया आ गए श्रद्धा करके ना, लेकिन आप श्रद्धा करके मानना मत, आप श्रद्धा करके चुप मत होना। अब ये परीक्षण करना, ये बोला जा रहा है सही बोला जा रहा है कि नहीं। श्रवण करने के बाद आप मनन करो मन से, आप देखो ये क्या कहा जा रहा है। और ये हमारे जीवन में कहां तक इसको हम जीवन बना सकते हैं। फिर जो बात निश्चित हुई उसका जीवन में अनुकरण करना, सत्य मालूम पड़ा, सत्य का बोध हुआ और सत्य का बोध होने के बाद आप अपने जीवन में उसका अनुकरण कर रहे। अनुकरण का ही नाम निधिध्यासन है। निधिध्यासन का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं। निधिध्यासन का अर्थ है प्रायोगिक जीवन। निधिध्यासन का अर्थ है प्रयोग। आपने जो सुना सत्संग उसका आप जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग का ही नाम निधिध्यासन है। प्रैक्टिकल आचरण का ही नाम निधिध्यासन और उसके बाद फिर आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन। इसलिए शास्त्र वही चीजें कहता है जो आपके जीवन का अनुभव है ना। आपके जीवन में जो घटता है, जो आप हैं, वही शास्त्र विश्लेषण करके बताते हैं। इसलिए संपरित्य आप यथार्थ विश्लेषण करके चलेंगे तो आपको वैराग्य होगा। आप कहीं अटकेंगे ही नहीं, है ना। आप कहीं नहीं अटकेंगे। आप कहीं राग हुआ तो मालूम है बाहर की वस्तु अच्छी दिखाई दे रही, आप सोचे नहीं भैया ये तो मेरे अंदर की चीज है। कितनी बड़ी चीज है ये, कितना बड़ा विवेक है। कोई वस्तु बुरी दिखाई दे रही है तो आप क्या सोचेंगे, भैया मेरे अंदर उसके प्रति दृष्टिकोण है, इसीलिए वो वस्तु बाहर की बुरी दिखाई दे रही। इसलिए संसार का आकर्षण, संसार आपको खींच रहा है तो उस समय आप सोचिए कि अंदर आकर्षण है इसीलिए बाहर आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए अपने को यहां के आकर्षण को कम करना है। बाहर के वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है, वस्तु के पीछे, भौतिक पदार्थों के पीछे भागना नहीं। अपने को मालूम है कि भैया यहां है इसीलिए वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, वो स्वर्ण मृग मालूम पड़ रहा है क्योंकि अंदर आसक्ति है। मृग के प्रति आकर्षण है, सोने के रंग के प्रति आकर्षण है। सोने के प्रति आकर्षण वो स्वर्ण मृग दिखा देगा क्योंकि वहां पर चमक है, सोने की चमक है। ये विवेक, और ये विवेक जीवन में जब आएगा तो आप पार्थक्य बोध, आप सत और असत को अलग कर पाएंगे, आप नीति और अनीति को अलग कर पाएंगे और उससे आप अलग हो, अलग भी हो सकेंगे। इसलिए कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतत तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। इसलिए यहां पर धीर शब्द का प्रयोग किया है। इसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत, बहुत बड़े धैर्य की जरूरत है, बहुत बड़े तटस्थ विचारशील व्यक्ति के होने की जरूरत है। ध्यान देना, ये विवेक को पाना कोई सामान्य चीज नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आगे इस श्लोकों में आएगा। ज्ञानी पुरुष के जीवन में सब बराबर हो जाते हैं। ज्ञानी के पुरुष, ज्ञानी पुरुष का अर्थ यही है, उसके लिए जो सब बराबर है, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं है। गहरी बात, वो पाएगा, अनुभव होगा उसके जीवन में, सब अपने हैं, कौन पराया, उसकी भूमिका है ये। आपको बोध में जाना है और वो बोध क्या है, यही तो बोध है। पंडिताः समदर्शिनः इहैव तयज्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः। भगवान कहते हैं इहैव तयज्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितः मनः, जिसका सम्यता में मन स्थित हो गया है। अब यहां साम्य का अर्थ वो परमात्मा, वो भगवान ने बोला है साम्य निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। लेकिन उसके प्रारंभ में भगवान ने साम्य स्थितः मनः, साम्य में, और साम्यता की परिभाषा भगवान पंडिताः समदर्शिनः, मेरे पंडित मेरे समदर्शी, समदर्शी माने ब्रह्मदृष्टि, और ब्रह्म कहां पर ब्रह्मदृष्टि, भगवान ने गिना दिया शुनी चैव स्वपा के सारी चीजें गिना दी, गाय भैंस कुत्ता विद्वान पंडित छोटा बड़ा अच्छा बुरा सबके अंदर साम्य दृष्टि बन गई जिसकी। ब्रह्म दृष्टि माने साम्य दृष्टि, आप सबको समझ रहे हैं ब्रह्म ही है। वो अपने राजेश्वरानी जी बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे, लकड़ी दिखती है कि दरवाजा दिखता है, अच्छी बात बोल रहे हैं भाई। दरवाजा और लकड़ी कोई अलग है क्या, लेकिन आपको क्या दिखाई देती है, लकड़ी दिखाई देती कि दरवाजा वहां मटका है कि मिट्टी है, लेकिन आपको मिट्टी दिखती है कि मटका दिखता है, मटका दिखता है। अब वेदांत ही कहता है ना, ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म। लेकिन आपको क्या दिखता है? आदमी दिखता है कि ब्रह्म दिखता है? आपको स्त्री दिखती है कि ब्रह्म दिखता है? मेरा तेरा दिखता है कि ब्रह्म दिखता है? जाना वहां, पाना वहां है। अपने जीवन का उद्देश्य वो है। वेदांती साधक का उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन समत्व में स्थित हो जाए, हमारा जीवन समत्व में स्थित हो जाए। ये समत्व में स्थिति का ही नाम मोक्ष है, आप ध्यान दें। समत्व में स्थित होने का ही नाम मोक्ष है। आपका मन समत्व में स्थित हो गया, ब्रह्मदर अब सार हर जग हर वस्तु आपको परमात्मा नजर आने लगी। परम पूज्य महाराज श्री को उड़िया बाबा जी महाराज प्रारंभिक अवस्था में, शायद वो कर्णवास की बात है, गंगा के किनारे बालू में बैठे हैं, और उड़िया बाबा जी महाराज परम पूज्य महाराज श्री को हाथ में बालू लेके बोल रहे हैं, हे शांतनु, इस बालू के एक एक कण में जब तक तुमको ब्रह्म दर्शन नहीं होते हैं, तब तक तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं है। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। बालू के एक एक कण में जब तक ब्रह्म दर्शन नहीं होते हैं, तब तक वो ज्ञान तुम्हारा पूरा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सोने में तो आपको ब्रह्म दर्शन हो, और मिट्टी में, सोने में ब्रह्म दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। अरे आपको अपने गुरु में ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हो जाते कि नहीं? वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल गरीब भूखा नंगा आपको ब्रह्म दर्शन हो, तब वो ब्रह्म दर्शन है। पढ़े लिखे विद्वान भव्य साधु में ब्रह्म दर्शन हो गया, हा हा, सहज है ना, सरल। बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं साधु, बहुत देखने में अच्छे हैं, भव्य हैं, वहां ब्रह्म दर्शन क्यों मधु बाबू? वहां ब्रह्म दर्शन करना सरल है कि कठिन है? अरे वहां तो चट से चुटकी बजाते आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएंगे, लेकिन कोई भिखारी महात्मा आ जाए, थोड़ा भिक्षुक, और वो बोले कि भैया अग्रिशानंद जी हमको थोड़ा 10-11 हजार रूपये चाहिए, हमको यात्रा करने के जाना है, कल महात्मा एक आए थे ना रामेश्वरम की यात्रा करना, लो 11 हजार रूपये, आप उसमें आपको ब्रह्म दर्शन होंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा जी ने जो बात बोली ना, बहुत गहरी बोली, बोले इस बालू के एक एक कण में जब तक ब्रह्म दर्शन नहीं होते, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। और भगवान ने बात बोली, सुनी चे व शोभा की च पंडिता समदर्शन। भैया उस तत्व को पाना है, और आज यहां है तो शुरुआत यहां से है। आज हम यहां से चल रहे हैं ना, उसकी शुरुआत यहां से है। हाँ, हमको वहां पाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी विषय में लॉ में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो जैसे आप उसमें प्रवेश करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? वही आप वहां एडमिशन लिए हैं तो आपका पूरा सब्जेक्ट पहले दिन से शुरू हो जाता है, आप जीना शुरू कर देते हैं, वो हर चीज वो उसी में, उसी वातावरण में, उसी माहौल में, उसी प्रकार आपको पाना है समत्व को, उस ब्रह्म दृष्टि को। और आज यहां से चल रहे वैषम्य लेके, तो आप उसको पाओगे कभी? इसलिए साधक को सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए सिद्ध अवस्था के जो गुण हैं, जो सिद्ध अवस्था के स्वरूप हैं, वो अपने जीवन में साधना के रूप में अपना लेना चाहिए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अपने भाष्य में, सिद्ध के जो लक्षण होते हैं वो साधक के साधन होते हैं। साधक के साधन, साधन का मतलब अपनाने के लिए होते हैं, अनुभूति नहीं है, लेकिन वो दया है, करुणा है, सबके प्रति करुणा, समत्व, सबको समान रूप से देख रहा है वो साधक है, सबको समान रूप से देख रहा है, सबके प्रति प्रेम, अपनत्व, दया, करुणा, और यही दया करुणा सबके प्रति जो अपनत्व है वो समत्व में ले जाता है। सिद्ध अवस्था में फिर सब में ब्रह्म देखने लगता है। साधन अवस्था में दया है सबके प्रति, समत्व का भाव, और वो सिद्ध अवस्था में जाके ब्रह्म भाव में बदल जाते हैं। इसलिए यहां कहते हैं ताव संपरित्य, अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक जानकर विविनक्ति धीरा, और इसलिए ये बहुत ऊंची चीज है। इसलिए शब्द का प्रयोग किया, इन चीजों को जीवन में धारण करने के लिए, समझने के लिए धीर की आवश्यकता, धीरता की, धैर्य की आवश्यकता है। ये मन का लट्टूपन है ना, शिथिलपन है ना, ये कमजोर आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़े हृदय की बात है, ये बहुत बड़े दिल की बात है। परम पूज्य महाराज श्री के सामने एक कोई बिल्कुल भूखा नंगा पसीने से लथपथ और बिल्कुल कई दिनों के बिना धोए कपड़े पहना हुआ आदमी आया, फटे पूरा दिन, और उनको भी महाराज जी बोलते आओ भैया आओ आओ, कहां से आए महात्मा, कहां से आए। लोगों ने बोला ये महात्मा, भगाओ इसको, लोगों ने आना बंद कर दिया उसका, लोगों ने उनका आना ही बंद कर दिया। महाराज जी के पास एक बार आया, वो बोला महाराज, बोले हमको आपके पास लोग आने नहीं देते। महाराज जी ने कहा बहुत दिन हो गए तुम आते नहीं, बात क्या है। बोले लोग रोकते हैं, आपके चेले चपाटी जितने हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत गंदा आदमी हूं और मैं आऊंगा तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। महाराज जी ने कहा तुम्हारे कारण मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे कारण तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। देखो कितना बड़ा सोच है। महाराज ने कहा तुम मेरे पास आओगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो मैं इतना मतलब कमजोर आदमी हूं कि उल्टा तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। महाराज ने कहा तो उल्टा बोल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं गलत। भैया भगवान के मंदिर में कोई जाए तो जाने वाला पवित्र हो जाना चाहिए कि भगवान ही अपवित्र हो जाना चाहिए? भाई भगवान की इतनी शक्ति है कि जो जाए वो पवित्र होके बाहर आए, होना तो ऐसा ही चाहिए ना, कि भगवान इतने कमजोर कि आदमी गया और भगवान कहां गए भैया, गंगा स्नान करने के लिए गए। बोले क्या हुआ? अरे बोले अमुक आदमी अंदर गया था वह पवित्रा नाम पवित्रम, जिसका नाम इतना पवित्र है और उसको भी गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़े किसी के छूने से, तो नारायण तो बड़ा कमजोर होगा भगवान आपका। फिर महाराज ने कहा कि नहीं, और हुआ ही, महाराज ने कहा तुम 2 बजे आया करो मेरे पास, 2 बजे। और महाराज कुंडी खोल के रखते थे, 2 बजे सब सो जाते थे। महाराज ने कहा सब सो जाते हैं, तुम चुपचाप आओ 2 बजे, कुंडी खोल के रखते थे। क्या महापुरुष, ये धीरा यही है, क्या धैर्य, क्या प्रेम। और वो सोने का समय, आदमी सोचता ये समय यार, बड़े से बड़ा आदमी भी आए बोले राम राम, ये 2 बजे का समय, और वो आदमी आता, और वो आता तो दूर नहीं बैठता था, वो महाराज जी के पास नहीं, गोद में भी नहीं, महाराज जी सोए रहते थे ना 2 बजे, वो गले पूरे पीठ पर ऐसे लेट जाता था, महाराज जी के पेट पर लेट जाता था, और फिर वो महाराज जी पीठ पर हाथ फेरते, कुछ श्लोक गुनगुनाते, और फिर 5-10 मिनट रहता आदमी और उसको चला जाता था। एक दिन 2 दिन किसी को मालूम ही नहीं, अचानक किसी सेवक की दृष्टि पड़ी तो दरवाजा खुला है और महाराज गुनगुना रहे। बोले बात क्या है, कोई अंदर तो नहीं गया? देखा वही आदमी जिसको चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं थे लोग, और वो महाराज जी के पेट पर लेटा हुआ है। और क्या प्रेम महाराज जी का, और महाराज जी पीठ पर हाथ फेरे, क्या ज्ञानी को, क्या गंदा, क्या क्या छोटा, क्या बड़ा। उनके लिए तो मालूम है कि ये भी मेरी आत्मा है, ये वो तो उपाधि है, बाहर की उपाधि है, वो मेरी कल्पना है, मैं तो आत्मा है, ये आत्मा हूं। क्या धैर्य, देखो इसके लिए, इन्हीं चीजों के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। क्या अंत, क्या भाव उनका हृदय का। इसलिए कहते हैं तव संपरित्य विविनक्ति धीरः। अभी धीर शब्द की व्याख्या परम पूज्य महाराज श्री कैसे करते हैं कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।